नमस्कार भारत। आज है 26 जनवरी दिन शुक्रवार। सभी श्रोताओं को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। आज भारत मना रहा है अपना 69वां गणतंत्र दिवस। 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे समारोह के मेहमान। पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने की भाईचारे की अपील।
निस्वार्थ भावना वाले नागरिकों और समाज से ही एक निस्वार्थ भावना वाले राष्ट्र का निर्माण होता है।
ट्रंप ने फलस्तीन को आर्थिक मदद रोकने की धमकी दी। सुनवाएंगे विश्लेषण।
जिस तरह से अमेरिका ये सारी चीजें इसराइल को महफूज करने के लिए, इसराइल की प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए कर रहा है, वो बैकफायर हो जाएगा।
और पद्मावत क्या एक स्त्री विरोधी फिल्म है?
उसका पूरा अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से उसके पति के अस्तित्व के साथ जो है वो उसकी जुड़ी हुई है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। आज भारत अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के खास मेहमान हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलिस्तीन को मुहैया कराए जाने वाली वित्तीय मदद बंद करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर फलिस्तीन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो ये कदम उठाया जा सकता है। जब फलिस्तीन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो क्यों ना हम उसकी वित्तीय मदद बंद कर दें। ट्रंप ने ये बातें दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कहीं। सीरियाई शहर अफरीन में तुर्की के सैन्य अभियान का सामना कर रहे कुर्द लड़ाकों ने सीरिया की सरकार से मदद की अपील की है। तुर्की की सेना ने इस क्षेत्र में करीब एक हफ्ते से कुर्दों के खिलाफ सैन्य अभियान छिड़ा हुआ है। अब कुर्द अथॉरिटी ने सीरियाई सरकार से सरहदी इलाकों में सुरक्षा बलों को भेजने की गुहार लगाई है। कुर्दों की इस अपील पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस क्षेत्र में कुर्द लड़ाकों की अमरीका मदद कर रहा है। अमरीका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैथर नुआर्ट ने अफरीन में तुर्की के दखल पर चिंता जाहिर की है।
We believe that everyone should keep their eye, the focus on ISIS.
हम ये मानते हैं कि सभी को अपना ध्यान सिर्फ इस्लामिक स्टेट पर लगाना चाहिए, दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। PKK को लेकर हम तुर्की की चिंताओं को समझते हैं। अमरीका PKK को आतंकी संगठन मानता है। अगर अफरीन में तुर्की जो कर रहा है वो जारी रहता है तो हमारा ध्यान इस्लामिक स्टेट से भी हटेगा। हम सीरिया में सिर्फ इसलिए हैं ताकि लोगों का कत्ल करने वाले इस्लामिक स्टेट को बाहर निकाला जा सके। ये थे अमरीकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। वेनेजुएला ने स्पेन के राजदूत जीसस सिल्वा फर्नांडिस को आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाकर निष्कासित किया है। स्पेन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वेनेजुएला के इस कदम का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बीते हफ्ते यूरोपीय संघ ने ट्रैवल बैन लगाने के साथ वेनेजुएला के अधिकारियों की संपत्ति को जब्त किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि स्पेन और अमरीका मुल्क की अर्थव्यवस्था को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व अमरीकी राजनयिक और आन सान सूची के लंबे वक्त तक दोस्त रहे बिल रिचर्डसन ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो काफ़ी बदल गई हैं। रिचर्डसन ने कहा कि आन सान सूची का ध्यान मानवाधिकारों से हट गया है। रिचर्डसन ने कल ही उस अंतर्राष्ट्रीय पैनल से इस्तीफा दिया है जिसका गठन म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। रिचर्डसन ने पैनल के सदस्यों पर म्यांमार की सरकार की नीतियों को लेकर चीयर लीडर जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया। रिचर्डसन ने कहा, मुझे लगता है कि आन सान सूची काफ़ी बदल गई हैं। मुझे हमेशा ये लगा कि वो लोकतंत्र मानवाधिकारों के लिए अड़ी रहने वाली महिला हैं। उनमें सेना का सामना करने का साहस था, लेकिन आज मुझे लगता है कि उनकी छवि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली से बदलकर एक नेता की हो गई है। आज वो एक देश की नेता हैं और राजनीतिक हितों को सोचते हुए कदम उठा रही हैं। ये थे बिल रिचर्डसन के शब्द। व्हाइट हाउस ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की फंडिंग के बदले 18 लाख लोगों को अमरीकी नागरिकता का प्रस्ताव दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया में खबरें हैं कि डेमोक्रेट सांसदों से बातचीत से पहले ट्रंप के वरिष्ठ सहयोगी ने रिपब्लिकन सदस्यों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल पर इस योजना की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि यह प्रस्तावित विधेयक सोमवार को सामने आएगा जिसमें मैक्सिको से सटी सीमा पर दीवार बनाने के लिए $25 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपये की मांग की जाएगी। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज भारत अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत राजधानी दिल्ली में आज हर साल की तरह परेड होगी जिसमें प्रदेशों की झांकियां तो होंगी ही, साथ ही भारत अपनी सैन्य ताकत का नमूना भी पेश करेगा। ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खास मेहमान बनाया है। म्यांमार की नेता आंग सान सूची समेत इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चानोचा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक, वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्वेन श्वान फुक, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन, लाओस के प्रधानमंत्री थोंगलून सिसिलोथ और ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोल्खिया आज समारोह में शामिल हो रहे हैं। आसियान देशों से आमंत्रित 700 छात्र भी राजपथ पर परेड में हिस्सा लेंगे। आसियान देशों के ध्वज भी आकाश में फहराए जाएंगे। आज राजपथ पर पारंपरिक परेड में पहली बार बीएसएफ का महिला दल नारी शक्ति भी स्टंट का प्रदर्शन करेगा। इस बार राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की झांकी भी होगी। इसके अलावा भारत में निर्मित पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की एक झांकी भी समारोह का हिस्सा होगी। इससे पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा,
किसी दूसरे नागरिक की गरिमा और निजी भावना का उपहास किए बिना किसी के नजरिए से या इतिहास की किसी घटना के बारे में भी हम असहमत हो सकते हैं, ऐसे उदारतापूर्ण व्यवहार को ही भाईचारा कहते हैं। निस्वार्थ भावना वाले नागरिकों और समाज से ही एक निस्वार्थ भावना वाले राष्ट्र का निर्माण होता है।
वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बयान जारी कर लोगों से संविधान की रक्षा करने की अपील की है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने लोगों से कहा है कि वो संविधान और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की हर कीमत पर रक्षा करें। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि सभी को भारतीय संविधान और नागरिकों से किए गए उसके वादों को याद रखना चाहिए।
दिलनवाज पाशा से आपने सुना कि आसियान समूह के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मेहमान होंगे। आसियान देशों से भारत के संबंधों के 25 साल होने के उपलक्ष्य में भारत में एक विशेष सम्मेलन हो रहा है। इन देशों के शीर्ष नेताओं के भारत में होने के विदेश नीति के लिहाज से क्या मायने हैं, यही पूछा दिलनवाज पाशा ने म्यांमार और थाईलैंड समेत कई देशों में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू से।
आसियान देशों के साथ भारत के प्राचीन और पारंपरिक संबंध हैं। ये संबंध सांस्कृतिक हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में हैं, सामरिक हैं और आसियान देश भारत के निकट देश हैं, यानी नेबरहुड में हैं। तो इन देशों से जो हमारे आदान प्रदान हैं इन क्षेत्रों में और आने वाले सालों में ये संबंध बढ़ेंगे और घनिष्ठ होंगे।
भारत विश्व पटल पर अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास कर रहा है और कई स्तर पर ये हो रहे हैं। भारत के इन प्रयासों में आसियान देशों के रिश्ते कितने अहम हैं भारत के साथ?
देखिए, भारत एक महाशक्ति के रूप में विश्व में उभर रहा है और इस लिहाज से भारत के संबंध जो रीजन, जो क्षेत्र उसके नेबरहुड में हैं, उनके साथ बढ़ेंगे, उनके साथ वो प्रगतिशील होंगे और इस नेबरहुड में आसियान भी, आसियान के देश भी हैं और ये भी स्वाभाविक है कि ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, उसमें इनकी भूमिका बढ़े।
भारत और आसियान देशों के रिश्तों के जो 25 साल हुए हैं उसकी यादगार में जो ये सम्मेलन हो रहा है, क्या आपको उम्मीद है इससे क्या एक ठोस बात निकल के आ सकती है और इसका भारत में होना, आसियान देशों के नेताओं का भारत में जुटना भारत के लिए विश्व पटल पर क्या संकेत देता है?
जैसे कि पहले अफ्रीका के हर अफ्रीकाई देश के प्रतिनिधि आए थे जब इंडिया अफ्रीका समिट हुआ था, जैसे प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर के देशों के नेताओं को भारत ने निमंत्रण दिया था, उस अवसर पे भी एक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये दर्शाता है कि अब दुनिया ये मानती है कि भारत के पास वो सब है जो कि एक महाशक्ति को के पास होना चाहिए।
इसी क्षेत्र में चीन भी एक महाशक्ति है। ये जो पूरा एक समीकरण यहाँ पर बना है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है और एक तरफ 10 ये अहम देश हैं। क्या आपको लगता है कि इस सम्मेलन से या ये संकेत मिल सकता है कि अब ये देश है भारत की तरफ थोड़ा झुक सकते हैं?
मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव रहा है कि आसियान के देश और एशिया के अन्य देश, खासतौर से पूर्वी एशिया के अन्य देश, चाहते हैं कि उनके रिश्तों में एक संतुलन बने, उनके रिश्ते जो चीन के साथ हैं और भारत के साथ हैं वो संतुलित रहे। मेरा नहीं मानना है कि वो या चीन की तरफ झुकना चाहते हैं या भारत की तरफ झुकना चाहते हैं।
ये थे पूर्व राजदूत विवेक काटजू। उधर भारत प्रशासित कश्मीर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पर छात्राओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दो बंदूकधारी पुलवामा के एक स्कूल के प्रिंसिपल को धमकी दे रहे हैं कि वे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में छात्राओं को न भेजें वरना वे उनकी हत्या कर देंगे। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
वायरल हुए वीडियो में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा कस्बे में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल देखे जा सकते हैं, जिनसे चरमपंथी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं को ट्रेनिंग देने के खिलाफ प्रिंसिपल से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वीडियो में चरमपंथी प्रिंसिपल से अपील करवाते हैं कि कोई भी स्कूल की छात्र गणतंत्र दिवस में भाग नहीं लेंगी और ऐसा करने पर वो हर उस लड़की को मार देंगे और उसका घर जला देंगे। वीडियो में केवल प्रिंसिपल को देखा जा सकता है जबकि चरमपंथियों की आवाज को सुना जा सकता है। चरमपंथी कह रहे थे कि आप लोगों से माफी मांगे और कहें कि मुझसे गलती हो गई है और लड़कियों से भी कहें कि वो गणतंत्र दिवस में भाग न लें। अगर किसी भी लड़की ने ऐसा किया तो उसको मार दिया जाएगा और उसका घर भी जला दिया जाएगा। चरमपंथी वीडियो में ये भी कहते सुने जा सकते हैं कि कश्मीर में इतने लोग शहीद हो रहे हैं और हमारी लड़कियां गणतंत्र दिवस में क्यों डांस करेंगी। स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम मुहिद्दीन शेख ने वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि 24 जनवरी को दो बंदूकधारी चरमपंथी उनके घर में दाखिल हो गए और मुझसे कहा गया कि आप स्कूल की छात्राओं को गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। प्रिंसिपल गुलाम मुहिद्दीन शेख
हथियारों से लैस थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो 26 जनवरी जो है आज परेड है तो आप बच्चों को उसके लिए तैयार करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम के लिए आप उनको तैयार करते हैं। मैंने कहा तो ये ऐसा कि मैं तो इनको खुद तैयार नहीं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी है। तो हमारे, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ऊपर से ऑर्डर आते हैं हायर ऑफिस से तो उसको वही कैरी आउट करने होते हैं।
पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है और मामले की तफ्तीश जारी है। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से कश्मीर में चरमपंथी वीडियो या ऑडियो के जरिए आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ का गढ़ माना जाता है। अलगाववादियों ने आज कश्मीर बंद बुलाया है और लोगों से अपील की है कि वो 26 जनवरी का दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाएं। अलगाववादियों ने आज जुम्मा नमाज के बाद लोगों से आम लोगों को सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहा है। किसी भी संभावित चरमपंथी हमले को नाकाम बनाने के लिए पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
सिर्फ भारत ही नहीं है जहां आज परेड निकाली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी आज ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जा रहा है। सीधे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न जहां हमारे संवाददाता विनीत खरे परेड के कार्यक्रम में मौजूद हैं। विनीत, किस तरह मनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया दिवस?
कुलदीप, सबसे पहले समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया डे क्यों मनाया जाता है। दरअसल 1788 में ब्रिटेन से जहाजी बेड़े पहली बार सिडनी पहुंचे थे और उन्होंने झंडा गाड़ा था, तो उसी के उपलक्ष में ये ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है। हालांकि जो यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, नेटिव्स हैं यहाँ के रहने वाले, तो उनका कहना है कि भाई इन्होंने जो बाहर से लोग आए इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तो उसको लेकर एक विवाद रहा है कि 26 जनवरी को हटाकर किसी और दिन मनाया जाए। बहरहाल आज मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त 1 किलोमीटर के करीब जत्था चला है तो मैं एक पार्क में हूँ और चाहे हिंदुस्तानी कम्युनिटी हो, अलग अलग संस्थाओं के बैनर वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने रैली निकाली है। तो इंडियन कम्युनिटी के बैनर पर, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर आई है, उसके बाद से चाइनीज कम्युनिटी। मैं इस वक्त पार्क में, जैसे मैंने बताया, तो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ खेल रहे हैं, माँ मेरे सामने, उनके दो बच्चे उनके साथ खेल रही हैं, उसके बड़े बूढ़े भारतीय कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, मेरे बगल में खड़े हैं, सिख कुछ मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, लोग बाहर निकले हैं इस दिन को मनाने के लिए, और बड़ा दिन है। जैसे भारत में आज लोकतंत्र रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया डे यहाँ के लिए बड़ा दिन है।
बहुत शुक्रिया विनीत खरे, हमारे साथ जुड़े थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से। अब आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन की वित्तीय और सुरक्षा मदद रोकने की धमकी दी है। दावोस में इसराइली प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने ये आशंका भी जताई कि फलस्तीन और इसराइल के बीच शायद ही कभी शांति वार्ता हो सकेगी। ब्यौरा सुनिए विकास त्रिवेदी से।
दावोस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब फलस्तीन पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तब ट्रंप के बगल में बैठे इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू इस दौरान मुस्कुरा रहे थे। विश्व आर्थिक मंच पर ट्रंप ने फलस्तीन को मुहैया कराई जाने वाली वित्तीय और सुरक्षा मदद को रोकने की धमकी दी है और संदेह जताया है कि वो नहीं जानते कि इसराइल और फलस्तीन के बीच कभी शांति वार्ता हो सकेगी या नहीं। उन्होंने कहा, अगर फलस्तीन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो ये कदम उठाया जा सकता है। जब फलस्तीन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो क्यों ना हम उसकी वित्तीय मदद बंद कर दें। अमेरिका हर साल फलस्तीन को करोड़ों डॉलर से मदद और समर्थन करता है। पैसा मेज पर है, लेकिन हम इसे तब तक फलस्तीन को नहीं देंगे जब तक वो शांति वार्ता के लिए तैयार ना हो जाएं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इसराइल से शांति वार्ता की मध्यस्थता करने की अमरीका की पेशकश को फलस्तीन ने कई बार खारिज किया है। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हाल ही में यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के ट्रंप के फैसले को सदी का थप्पड़ बताया था। उधर इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप के सुर से सुर मिलाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक फैसला है जो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के दिल में रहेगा। इससे हम शांति की तरफ बढ़े हैं क्योंकि ये मौजूदा हकीकत और इतिहास को मान्यता देता है। शांति सिर्फ सच के आधार पर स्थापित की जा सकती है। इतिहास को मान्यता देकर आपने इतिहास बनाया था, हम इसे याद रखेंगे। ये थे नेतन्याहू के शब्द। अमेरिका ने इसी महीने की शुरुआत में फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का $65 मिलियन का फंड रोक दिया था। अमेरिका ने साल 2016 में फलस्तीन की $260 मिलियन की मदद की थी, जबकि अमेरिका इसराइल को हर साल $3 बिलियन की सैन्य मदद पहुंचाता है।
विकास त्रिवेदी से ब्यौरा सुन रहे थे आप। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने अमरीका में प्रोफेसर मुक्तदर खान से संपर्क किया और सबसे पहले यही पूछा कि इसराइल फलस्तीन के पुराने विवाद के संदर्भ में इस बयान की अहमियत कितनी है और इसके मायने क्या हैं।
ट्रंप की जो तकरीबन पूरी तकरीर और बयान और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर होता है कि एक तो एक वो बहुत नाराज हैं और अपसेट हैं कि फलस्तीनियों ने माइक पेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ मुलाकात नहीं की, और जिस तरह से उन्होंने उनका विजिट को रिजेक्ट किया है वो अमेरिका के लिए एक इंसल्ट के तौर पे देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वो बेसिकली चाहते हैं कि उनका जो पीस प्लान जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो पैलेस्टीनियंस उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो बस ये एड की धमकी दे रहे हैं कि जब एड रोक देंगे। तीसरी चीज वो बेसिकली चाह रहे हैं कि ये मसला जेरूसलम के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं उसको विड्रॉ करे बड़े बगैर ही आगे बढ़े, और उसी कॉन्फ्रेंस में डेवस में महमूद अब्बास ने ये साफ कह दिया कि अगर जेरूसलम टेबल पे नहीं होता तो ट्रंप उस टेबल से हट जाए, मतलब तो उनकी ये बयान था। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं वो कभी कभी ऑन द स्पॉट जो उनके दिल में आ जाती है बात, जो ख्याल आता है उसको वो अपने मुंह से निकाल देते।
कितनी बड़ी बात यह है, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति अब ये बात कह रहा है कि शायद कभी शांति वार्ता नहीं हो सकेगी।
देखिए, ये जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ था 1994 वो अमेरिका की इनिशिएटिव की वजह से नहीं शुरू हुआ था, वो तो ऑस्लो पीस प्रोसेस था। ऑस्लो में मैड्रिड में टॉक्स शुरू हुए थे, तो अर्ली 1990s से जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ था वो यूरोपियन इनिशिएटिव के वजह से शुरू हुआ था। और अब महमूद अब्बास ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल अदा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सदर अमेरिका की मदद के बगैर, अमेरिका के सपोर्ट के बगैर, और शायद अमेरिका के एक्टिव अपोजिशन के वजह से यूरोप की तरह भी कोशिश कर ले, ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ये सारी चीज़ें इसराइल को
محفوظ کرنے کے لیے اسرائیل کی پراسپیرٹی بڑھانے کے لیے کر رہا ہے وہ بیک فائر ہو جائے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل خود نہ صرف دوسرے ملکوں سے علیحدہ ہو جائیں گے اور آئسولیٹ ہو جائیں گے, بلکہ جو یورپین یونین ہے جو امریکہ کا اتنا قریبی ایلائی ہے اس سے بھی اس مسئلے پر اور اس کی وجہ سے دوسرے مسائل یعنی ٹریڈ اور سینکشنز کے وجہ سے امریکہ مجبوراً یورپ سے تھوڑا آئسولیٹ ضرور ہو جائے گا. الٹیمیٹلی تو نقصان فلسطینیوں کا ہوگا کیونکہ سیٹلمنٹ ایکٹیویٹی بڑھتے رہے گی اور جو زمین فلسطین کے ملک کے لیے باقی ہے وہ ختم ہوتے جائے گی.
یہ تھے پروفیسر مقتدر خان. اسرائیل میں یہودی اور فلسطینی سمودایوں کے بیچ دشکوں سے نفرت کی ایک دیوار کھڑی ہے, لیکن یروشلم کے نزدیک ایک گاؤں ہے جہاں دونوں طرف کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں. اس گاؤں میں پہنچے ہمارے سنواد داتا زبیر احمد اور وہاں سے ہمیں یہ بھیجی رپورٹ.
کیا فلسطینی اور یہودی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیا دونوں کے بیچ نفرت کی دیوار گر سکتی ہے؟ عرب یوتی رانا ابو فرح کو اس دیوار کا احساس ہوا اپنی ماں کے انتقال کے وقت. یہودیوں نے ان کی ماں کو اپنی قبرستان میں نہیں دفنانے دیا.
میرے لیے یہ کافی مشکل تھا. پہلی بار احساس ہوا کہ میں اس سماج کا حصہ تو ہوں لیکن صرف ایک حد تک.
یہ کہانی کسی ایک کی نہیں, جھگڑا برسوں پرانا ہے, لیکن ایک گاؤں ہے جو اس کہانی کو بدل رہا ہے. ہیبرو میں نیو شلوم اور عربی میں واحد السلام, یہ ہے اس بستی کا نام. اس بستی میں 70 سے ادھک یہودی اور عرب پریوار ساتھ رہتے ہیں. یہاں اسکول میں بچوں کو لوکتنتر میں پردرشن کرنے کی سیکھ دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ فلسطینی ناگرک سمح سلامی کہتی ہیں,
ہم یہودی اور فلسطینی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح پردرشن کر اسرائیلی قبضے میں موجود لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس سے انکار نہیں کہ یہ ایک بدصورت حقیقت ہے, لیکن ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ کس طرح قبضے کا ویرودھ کر سکتے ہیں.
یروشلم اور تل اویو کے بیچ یہ بستی پہاڑی پر آباد ہے. یہودی ناگرک نوا سونین شوچک کا کہنا ہے,
ہم جن 70,000 لوگوں تک پہنچے ان میں بدلاؤ آیا ہے. اسرائیل اور فلسطین میں کئی لیڈر ہیں جو مانو ادھیکار سنگٹھن چلا رہے ہیں.
اس بستی کی منزل دور دکھتی ہے, لیکن کوششوں میں کمی کوئی نہیں رکھنا چاہتا. زبیر احمد, بی بی سی, نیو شلام, واحد السلام گاؤں, اسرائیل.
اب وقت ہے دلی سے چھپنے والے اخباروں کی سمیکشا کا. وکاس ترویدی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. وکاس, کیا خاص ہے آج کے اخباروں میں؟
کلدیپ, آج 26 جنوری ہے اور گڑتنتر دیوس کی پورو سندھیا پر راشٹرپتی رام ناتھ کووند نے جو پہلی بار دیش کو سمبودھت کیا تھا, یہ خبر سبھی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے. دی انڈین ایکسپریس نے کووند کے بیان کو شیرشک بنایا ہے کہ دوسرے کی گریما کا اپہاس اڑائے بنا ایسے مت ہو سکتے ہیں اور پڑوسی کے ادھیکاروں کا سمان کریں.
اسی بیان جو انہوں نے بھاشن دیا کل, اس کا ایک حصہ ہم نے بھی کارکرم میں بھی سنوایا.
جی, اس خبر کے ساتھ ہی جس یہ ہے کہ اخبار نے جو تصویر لگائی ہے وہ پدماوت کی لگائی ہے, جہاں سنیما ہال میں لگی ہوئی ہے اور باہر سرکشا بل تعینات ہیں.
تو راشٹرپتی کے اس بیان کو پدماوت فلم سے جوڑ کر کے اخبار نے دیکھا ہے.
انڈین ایکسپریس کی دوسری خبر ہے جی ایس ٹی ریونیو کلیکشن سے لے کر کہ دسمبر میں 86,703 کروڑ روپے کا رہا ہے کلیکشن, یہ وت منترالے کا کہنا ہے. انڈین ایکسپریس کی ہی ایک اور خبر ہے آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوت سے جڑی ہوئی, جس میں بھاگوت نے ایک کارکرم میں کہا ہے کہ جاتی کی راجنیتی مجھے نہیں کرنی, ایسا میں سوچ کر جاتا ہوں, لیکن سماج تو جاتی پر ووٹ دیتا ہے تو مجھے کرنی ہی پڑتی ہے, مجھے وہاں ٹکنا ہے تبھی تو پریورتن کر سکوں گا.
ایک دینک بھاسکر میں میں ایک چھوٹی سی خبر دیکھ رہا ہوں, گنتنتر دیوس سماروہ میں راہل کو چوتھی قطار میں جگہ, کانگریس ناراض, یہ شیرشک ہے. گنتنتر دیوس سماروہ میں کانگریس ادھیکش راہل گاندھی کو چوتھی لائن میں بیٹھنے کی جگہ ملی ہے, حالانکہ اس کی آدھیکارک طور پر پشٹی نہیں کی گئی ہے, اس سے کانگریس ناراض بتائی جا رہی ہے.
ہندوستان ٹائمز کی پہلی خبر ہے آسیان سمیلن سے جڑی ہوئی, اخبار لکھتا ہے کہ مودی نے 10 راشٹر پرمکھوں سے آتنکواد کے خاتمے اور ویاپار کو لے کر بات کی, یہ اخبار نے لکھا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز میں ہی خبر ہے کانگریس سے جڑی ہوئی کہ کانگریس ادھیکش راہل گاندھی نے اپنی کور ٹیم کا پرمکھ کوپولا راجو کو بنایا ہے, وہ پورو بیوروکریٹ ہیں और राजू पार्टी के दलित चेहरा हैं और 2013 से शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख रहे हैं। जनसत्ता की एंकर खबर है कि मद्रास हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे 40 साल के कैदी को अपना परिवार बढ़ाने के लिए दो हफ्ते की छुट्टी दी है। इस बारे में उनकी पत्नी ने याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की छुट्टी दी है। इसके अलावा दैनिक जागरण अखबार में पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों को दी जाने की खबर को छापा है। बाकी अखबारों ने भी इसको छापा है। अखबार लिखता है कि इलैया राजा समेत 3 हस्तियों को पद्म विभूषण, धोनी, पंकज अडवाणी को पद्म भूषण, 31 आम लोगों समेत 73 को पद्मश्री पुरस्कार।
इसी में शायर अनवर जलालपुरी को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है, जिनकी हाल ही में जिनका देहांत हुआ था। बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी अखबारों की समीक्षा के लिए। पद्मावत फिल्म कल रिलीज हुई थी। इसका पहला शो देखकर लौटी बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने बताया कि इसमें न हिंदू रानी और मुस्लिम राजा के बीच प्रेम प्रसंग है और न ही ख्वाब के जरिए कोई अंतरंग दृश्य दिखाए गए हैं। दिव्या के साथ फिल्म देखने गई दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर चारू गुप्ता को फिल्म के साथ एक अलग समस्या लगी। उन्हें फिल्म में पद्मावती का चित्रण स्त्री विरोधी लगा। दिव्या ने उनसे इसकी वजह पूछी।
जिस नज़रिए से विरोध किया जा रहा है, मेरा नज़रिया एकदम उसके अलग है। करणी सेना इसलिए विरोध कर रही है पद्मावती के चित्रण का कि उनको पुरुषों के सामने दिखाया गया है, कि उनको एक्सपोज किया गया है, कि उनके बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं। मेरा विरोध एकदम उल्टा है। मेरे हिसाब से ये एक स्त्री विरोधी फिल्म है, ये एक स्त्री हिंसा को प्रमोट करने वाली फिल्म है। ये फिल्म उच्च वर्ग और उच्च अपर कास्ट के पितृसत्तात्मक मूल्यों को और मजबूत करने वाली फिल्म है।
फिल्म के आखिरी 15 मिनट में रानी पद्मावती और उनके साथ बहुत सारी राजपूत औरतें जौहर करती हैं। क्या इस आलोचना की मुख्य वजह ये है कि एक बहुत महिमा मंडन के साथ उस जौहर को दिखाया गया?
ये एक मुख्य कारण है, पर मुझे लगता है कि आप केवल अंत को नहीं दे सकते। पूरा फिल्म का बिल्डअप है उसमें, जहाँ उसको दिखाया गया है कि वो एक पूरी तरह से पतिव्रता स्त्री है, पति के लिए कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार है। जब तक उसका पति राज्य में है, उसकी तो कोई आवाज़ भी नहीं है, उसकी बातों को कोई तूल नहीं दी जाती है, और आगे चलकर भी उसका पूरा अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से उसके पति के ऑनर के साथ और पति के अस्तित्व के साथ जो है वो उसकी जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है, विमेन के प्रति एक वायलेंट फिल्म है। पर मुझे किसी भी रूप में, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं बैन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो तो पूरी तरह से मुझे लगता है एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फिल्म को एक नारीवादी दृष्टिकोण से देखने की बहुत बहुत ही गहरे रूप से ज़रूरत है।
फिल्मकार की तरफ से अगर मैं ये कहूँ तो वो ये कहेंगे कि इतिहास में जौहर का उल्लेख है, जिसमें कई औरतें जब उनके पति जंग में मारे जाते थे तो जीतने वाले से बचने के लिए आग में जलकर मरने का फैसला लेती थी। तो अगर उन्होंने इसे बड़े पर्दे पर दिखाया तो इसमें कुछ गलत नहीं है और इसे एंटी विमेन या स्त्री विरोधी नहीं माना जाए।
मुझे ये लगता है कि कहने को तो इतिहास में तो सती भी दर्ज है, इतिहास में तो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ वो दर्ज है, हम पार्टीशन में कितनी ही स्त्रियों का बलात्कार, लेकिन उसको आप कैसे दिखाते हैं, किस दृष्टिकोण से दिखाते हैं, क्या आप उसका कहीं ना कहीं कोई क्रिटिक पेश करते हैं कि नहीं, तो वो इस फिल्म में नहीं है। ये इस फिल्म में पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आप केवल इतिहास को प्रस्तुत नहीं कर रहे हो, बल्कि आप कहीं ना कहीं उसको समर्थन भी दे रहे हो, और वो मुझे लगता है कि यहाँ पर डायरेक्टर का एक फेलियर है कम्प्लीटली।
ये थी दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर चारू गुप्ता। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर सुनिए मुख्य समाचार विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया के एक अस्पताल में भीषण आग की खबर है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। आज भारत अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के खास मेहमान हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलिस्तीन को मुहैया कराई जाने वाली वित्तीय मदद बंद करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर फलिस्तीन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो ये कदम उठाया जा सकता है। जब फलिस्तीन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो हम क्यों ना उसकी वित्तीय मदद बंद कर दें। सीरियाई शहर अफरीन में तुर्की के सैन्य अभियान का सामना कर रहे कुर्द लड़ाकों ने सीरिया की सरकार से मदद की अपील की है। तुर्की की सेना ने इस क्षेत्र में करीब एक हफ्ते से कुर्दों के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ा हुआ है। व्हाइट हाउस ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की फंडिंग के बदले 18 लाख लोगों को अमरीकी नागरिकता का प्रस्ताव दिया जाएगा।
बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अजीत सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।